पृष्ठ संख्या 178, अध्याय 9, राग मारु बिहाग। राग मारु बिहाग एक आधुनिक राग होते हुए भी वर्तमान समय में अत्यधिक प्रचलित है। चाहे बिहाग भले ही न आए, परंतु मारु बिहाग प्रत्येक गायक वादक के ध्यान में अवश्य रहेगा। यह इस राग के सुमधुर होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसका विलंबित ख्याल रसिया हो न जा बहुत अधिक गाया जाता है। इस ख्याल के भी भिन्न भिन्न स्वरूप तथा अलग अलग बोल सुनाई पड़ते हैं। कुछ गायक रसिया हो न जा बस इतना ही स्थाई में बोल कहते हैं, एवं कुछ अन्य विद्वान रसिया हो न जा रे तथा कुछ अन्य लोग रसिया हो न जा वाहु के देश रे बोल गाते हैं। अंतरे के भी बोल और स्वरूप भिन्न भिन्न सुनाई पड़ते हैं। इन बोलों में कौन सा बोल सही है यह कहना तो अधिक दुष्कर है, परंतु मेरे विचार से इसके स्थाई अंतरे का बोल इस प्रकार होना चाहिए, यथा स्थाई रसिया हो न जा वाहु के देश, अंतरा मन चिंता मैं तो बावरी भई, धरी हो जोगन को भेष। प्रस्तुत राग की उत्पत्ति कल्याण ठाट से हुई है। इसमें दोनों मध्यम तथा अन्य स्वर शुद्ध प्रयुक्त होते हैं। तीव्र मध्यम का प्रयोग आरोह अवरोह दोनों में ही किया जाता है। शुद्ध मध्यम का अपना एक निश्चित स्थान है, यथा सामा मग कभी कदाचित साग मग, इस प्रकार भी शुद्ध मध्यम का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार बिहाग में शुद्ध मध्यम अधिक एवं तीव्र मध्यम का प्रयोग कम होने से उसे बिलावल थाट जन्य मानते हैं, उसी प्रकार मारु बिहाग में तीव्र मध्यम का प्रयोग अधिक तथा शुद्ध मध्यम का प्रयोग कम होने के कारण इसे कल्याण थाट जन्य राग मानते हैं। प्रस्तुत राग में शुद्ध मध्यम का प्रयोग न करने से राग मार्ग बिहाग हो जाएगा। यह मारु बिहाग से भी अधिक नवीन राग है। प्रस्तुत राग के आरोह में रेधा वर्जित है तथा अवरोह संपूर्ण है, अतः इसकी जाति औडव संपूर्ण है। इस राग के वादी संवादी स्वरों के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ संगीतज्ञ इसका वादी संवादी गंधार और निषाद को मानते हैं, एवं कुछ अन्य विद्वान पंचम षड्ज को वादी संवादी मानते हैं। वस्तुतः राग के स्वरूप को देखते हुए पंचम षड्ज को ही वादी संवादी मानना अधिक उचित प्रतीत होता है। पृष्ठ संख्या 169। कतिपय विद्वान पंचम को इस राग के उत्तरांग का स्वर मानते हैं, इसलिए गंधार और निषाद को वादी संवादी मानते हैं। इन विद्वानों के विचारानुसार षड्ज से लेकर मध्यम का क्षेत्र पूर्वांग और पंचम से तार षड्ज तक का क्षेत्र उत्तरांग के अंतर्गत आता है। परंतु यदि ऐसी बात है तो मालकौंस ललित इत्यादि का वादी मध्यम भी पूर्वांग के अंतर्गत आएगा। हमीर और कामोद पूर्वांग राग है, किंतु उसका वादी स्वर पंचम है। यदि षड्ज से मध्यम तक पूर्वांग और पंचम से तार षड्ज तक उत्तरांग का क्षेत्र माना जाएगा तो बहुत से रागों के लिए यह समस्या उत्पन्न हो जाएगी कि कौन सा राग पूर्वांगवादी है और कौन सा उत्तरांगवादी। इस समस्या के समाधान हेतु शास्त्रकारों ने षड्ज से पंचम तक पूर्वांग और मध्यम से तार षड्ज तक उत्तरांग का क्षेत्र माना है। इस क्षेत्र को मान्यता प्रदान करने से ही हमीर कामोद ललित मालकौंस इत्यादि रागों के स्वरूप के अनुसार उनके क्षेत्र के अंतर्गत ही वादी स्वर की व्यवस्था हो जाती है। पूर्वांग उत्तरांग के इसी क्षेत्र के अनुसार मारु बिहाग में पंचम पूर्वांग का स्वर मानते हुए वादी स्वर मानना चाहिए। वस्तुतः इसे राग के नियमानुसार ही समझना चाहिए। कतिपय अन्य विद्वानों का कथन है कि चूंकि यह राग बिहाग और कल्याण के मिश्रण से बना है और बिहाग तथा कल्याण में गंधार निषाद वादी संवादी हैं, अतः इस राग में भी गंधार और निषाद को ही वादी संवादी मानना चाहिए। यह तर्क ठीक है, परंतु मिश्र रागों के लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार दो रंग मिलने से एक तीसरे रंग की उत्पत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार एक मिश्र राग का स्वरूप भी होना चाहिए जो कि मारुबिहाग में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। मारुबिहाग में पंचम में एक ऐसा खिंचाव है कि जब इस राग को प्रारंभ करते हैं तो शीघ्र से शीघ्र पंचम लगाने की इच्छा होती है। प्रस्तुत राग में पंचम इतना उदार स्वर है कि करीब करीब 95% बंदिशों का संग इसी पर मिलता है। बचे हुए 5% बंदिशों में से 3% षड्ज तथा 2% बंदिशों का सम गंधार एवं निषाद पर उपलब्ध होता है। पंचम की इस अनन्य प्रतिभा को दृष्टिपथ में रखते हुए पंचम को वादित्व प्रदान करना ही विवेकपूर्ण होगा। यदि ऋषभ को संवादित्व प्रदान किया जाए तो षड्ज पंचम भाव की दृष्टि से भी उचित ही होगा, परंतु अधिकतर यह देखा गया है कि बिहाग के प्रकारों में ऋषभ धैवत दुर्लभ होने से यह वादी संवादी के योग्य नहीं होता है। चूंकि राग मारु बिहाग में कल्याण अंग है, अतः ऋषभ दीर्घ किया जाता है, परंतु दीर्घ तथा कर्ण प्रिय स्वर होते हुए भी ऋषभ का प्रस्तुत राग में अपना कोई विशेष अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जब भी ऋषभ को गाया जाता है तो स्पष्ट रूप से अथवा कर्ण रूप से षड्ज पहले लगाकर तभी ऋषभ को गाया जाता है, यथा सा का कर्ण लिए हुए रे व ग सा रे ए सा, अथवा तीव्र म ग सा कड़युक्त रे सा या ग रे सा रे ए सा। अंतिम ग रे सा स्वर समूह में ऋषभ षड्ज से पहले लगा तो गया है, परंतु षड्ज से ऋषभ इतना प्रभावित है कि शीघ्र ही षड्ज की ओर खिंच जाता है। कभी कदाचित ऋषभ का भी प्रयोग बिना षड्ज का कर लगाए हो जाता है, जैसे तीव्र म ग रे ए सा, परंतु पुनः उसे षड्ज की शरण में आना ही पड़ता है। अवरोह छोड़कर आरोह में इसका प्रयोग हो ही नहीं सकता, जो कि ऋषभ के संवादी होने के लिए खास बाधक है। पृष्ठ संख्या 180। वादी संवादी होने के लिए किसी भी स्वर को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह आरोह अवरोह में स्वतंत्र रूप से भ्रमण कर सके। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार बहुत सुंदर और धनवान होने पर भी यदि कोई पुरुष बुद्धिहीन है तो उसका समाज में कोई विशेष अस्तित्व नहीं रह जाता और न ही उसे समाज में कोई महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। ठीक इसी प्रकार मारु बिहाग में ऋषभ दीर्घ तथा सुंदर होने पर भी उसकी अस्तित्वहीनता के कारण संवादी जैसे महत्वपूर्ण स्थान के योग्य नहीं रह जाता। इन सब कारणों के प्रकाश में यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वांग में किसी अन्य स्वर के स्थान पर षड्ज को ही संवादित्व प्रदान करना अधिक श्रेयस्कर है और न्यायोचित है। यहाँ यह प्रश्न भी उठ सकता है कि षड्ज को संवादी मानने से वादी संवादी दोनों ही मुख्य स्वर पूर्वांग में ही हो जाएंगे, जो राग नियम के सर्वथा प्रतिकूल है। इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत पुस्तक में राग श्याम कल्याण का परिचय देते समय किया जा चुका है। प्रस्तुत राग का गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। साधारणतः यह कहा जा सकता है कि प्रस्तुत राग का आरोह बिहाग अंग तथा अवरोह कल्याण अंग का है, जैसे सा म ग सा ग तीव्र म प नि तार सा। यद्यपि आरोह में मध्यम तीव्र है, परंतु फिर भी इसका चलन बिहाग की ही भांति है, क्योंकि ऋषभ और धैवत वर्ज्य हैं। दूसरी ओर अवरोह तार सा नी ध प तीव्र म ग सा का कर लिए हुए रे अवग्रह सा कल्याण की भांति है। जब मंद्र नी सा ग व मंद्र प मंद्र नी सा म ग इस प्रकार के स्वर समूह का प्रयोग करते हैं तो बिहाग स्पष्ट रूप से झलकता है, परंतु उसके बाद ही तीव्र म ग सा कड़ियुक्त रे सा इस प्रकार गाने से कल्याण समक्ष आ जाता है। तार सा नी धैवत कड़ियुक्त प कहने पर बिहाग दिखता है, परंतु ध तीव्र म प तीव्र म ग ऐसा स्वर समूह प्रयोग करने से बिहाग ढक जाता है। यद्यपि बिहाग जैसे तार सा नी ध कड़ियुक्त प का प्रयोग इसमें कम होता है, इसमें धैवत का प्रयोग कल्याण का मिश्रण होने के नाते स्पष्ट होता है। कभी कभी तो नी तार सा ध तीव्र म प इस प्रकार भी प्रयोग हो जाता है। प्रस्तुत राग में मुख्यतः अवरोहात्मक स्वर गाने से कल्याण अंग उत्पन्न होता है। बिहाग के द्वारा कल्याण और कल्याण के द्वारा बिहाग का आभास दूर होता रहता है। प्रस्तुत राग के संबंध में कतिपय विद्वानों का कथन है कि इसकी रचना बंबई के सुप्रसिद्ध स्वर्गीय अल्लादिया खान साहब ने किया था। सा ग प नी इस राग में न्यास के स्वर हैं। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत राग में सा म नी प ग की संगति तथा तीव्र म ग की पुनरावृत्ति बार बार होती है। पृष्ठ संख्या 181 स्वरों का स्थान तथा प्रयोग। प्रस्तुत राग में ऋषभ अनेक प्रकार से प्रयुक्त होता है, जैसे तीव्र म ग सा कड़ियुक्त रे अवग्रह सा तीव्र म ग रे कड़ियुक्त सा आ सा तीव्र म कड़ियुक्त ग ग कड़ियुक्त रे ए सा तीव्र म ग रे ए सा। ऋषभ के इस प्रयोग को दीर्घ बहुत्व की संज्ञा दी जा सकती है। गंधार का प्रस्तुत राग में संपूर्ण न्यास बहुत्व है, क्योंकि आलाप करते समय गंधार पर आरोह अवरोह दोनों की ओर से विश्राम करते हैं, जैसे मंद्र नी सा ग मंद्र प मंद्र नी सा ग प तीव्र म ग प ध तीव्र म कड़ियुक्त ग सा म ग इत्यादि। शुद्ध मध्यम का प्रस्तुत राग में निश्चित ढंग से प्रयोग होता है, जैसे सा म ग व कभी सा ग म ग, साथ ही इसका अल्पत्व भी है। तीव्र मध्यम का आरोह में आलंघन बहुत्व है, क्योंकि आरोह में कभी भी ईश्वर को छोड़ते नहीं है, इससे इसका अनाभ्यास अल्पत्व हो जाता है। जब कभी प ग तीव्र म ग इस प्रकार मध्यम को छोड़कर गंधार पर आते हैं तो तीव्र मध्यम का लंघन अल्पत्व हो जाता है। पंचम का प्रस्तुत राग में आंशिक न्यास बहुत्व यानी वादी स्वर संबंधित न्यास बहुत्व है। धैवत का नी प की संगति में लंघन होने से लंघन अल्पत्व हो जाता है, जबकि नी ध प नी तार सा ध तीव्र म प इस प्रकार धैवत का स्पष्ट प्रयोग करते हैं तो दीर्घ बहुत्व हो जाता है और नी का लंघन अल्पत्व भी हो जाता है। इस प्रकार धैवत निषाद को ढक लेता है, परंतु पुनः ग तीव्र म प नी तार सा नी नी ध प ध तीव्र म प ग तीव्र म प नी इस प्रकार निषाद प्रबल होकर दैवत के क्षणिक प्रभाव को नष्ट कर देता है। मारू बिहाग के संप्रकृति रागों में राग मार्ग बिहाग, बिहाग और कल्याण है, परंतु मार्ग बिहाग में शुद्ध मध्यम न होने से तथा कल्याण में शुद्ध मध्यम वर्जित और संपूर्ण होने से तथा बिहाग में शुद्ध मध्यम आरोह अवरोह दोनों में स्पष्ट रूप से प्रयोग होने से मारू बिहाग इन सभी रागों से पृथक तथा भिन्न परिलक्षित होता है। आरोह मंत्र नी सा म ग तीव्र म प नी तार सा, अवरोह तार सा नी ध प तीव्र म ग तीव्र म ग सा कड़ियुक्त रे सा। मुख्य स्वरूप प तीव्र म ग तीव्र म ग सा कड़ियुक्त रे सा, मंद्रनी सा म ग तीव्र म प तीव्र म कड़ियुक्त ग तीव्र म ग सा कड़ियुक्त रे सा।